ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुबह में भागवत महापुराण सातवें स्कंद अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश श्लोक संख्या 34 एवं अभ्यस्यत् चित्तम् कालेन अल्पीयसा यत्ते अनीशम् तस्य निर्वाणम् याति अनिबन्धना बहनिवत् एवं व्यस्तस्य चित्तम् एवं व्यस्तस्य चित्तम् काले नाम काले नाल्पीयसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् यात्या निबन्धन बहनिवात् एवं अभ्यस्यश्च चित्तम् एवं अभ्यस्तः चित्तम्
कुछ गड़बड़ लगता अंग्रेजी में चला तो
अंग्रेजी किताब एक कोई वर्ड छूट रहा है एवं अभ्यस्तः चित्तम् काले न अल्पीयसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् आत्या अनिबन्ध बानिवात् एवं अभ्यस्तश्चित्तम् काले न अल्प्यसायते काले न अल्प्यसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् यात्या निबन्धवानिवात् एवं अभ्यस्तश्चित्तम् काले नल्प्यसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् यत्या निबन्धन बहनिवात् माताजी लोग कोई माताजी पढ़ी लिखी नहीं है एवं इस प्रकार अभ्यस्यस्ता इस योग पद्धति का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का चित्तम हृदय कालेना कालांतर में अलपीयसा तुरंत ही यत्ते योगाभ्यासी व्यक्ति का अनीशम बिना रुके नित्य निरंतर तस्य उसका निर्वाणम समस्त भौतिक कल्मश से शुद्धि याति प्राप्त करता है अनिंदन बिना लपट या धुएं के या बिना ईंधन के, ये ठीक है ना, बिना ईंधन के अनिंदन बहनिवत आग के समान। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। कुछ गड़बड़ है, अंग्रेजी वाला है, बड़ी ट्रांसलेशन इंग्लिश, समथिंग रॉन्ग हियर, ट्रांसलेशन उचित नहीं है। When a yogi regularly practice in this way, in a short time, his heart becomes fixed and free from disturbance like a fire without flame or a smoke. तात्पर्य, निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का घोतक होता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव के इंद्रियां होती है और यदि वे इंद्रियां कार्य करना बंद कर दें तो जीव जीव न रहे, वह जड़ हो जाए, पत्थर या काठ की तरह। ऐसा संभव नहीं है। जीवित रहने के कारण जीव नित्य तथा चेतन है। जो लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं हैं, उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है, किंतु यदि कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है। इस शांति का वर्णन भगवत गीता 5:29 में हुआ है। मुक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। यदि कोई यह समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता, हर वस्तु के स्वामी तथा सबों के परम मित्र हैं, तो यह शांति प्राप्त होती है और वह भौतिक क्षोभ से मुक्त हो जाता है। किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, उसके लिए योगाभ्यास करने की संस्तुति की गई है। इस समय ट्रांसलेटिंग बैक साइड राघव प्रभु, वेयर आर यू? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इस अध्याय में श्लोक संख्या 30 से 34 के बीच में बताया गया है कि चित्त को कैसे बस में किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त का मतलब होता है इंद्रियां, चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब होता है कॉन्शसनेस और चित्त का मतलब होता है हृदय। तो सबके लिए सबको बस में कैसे किया जाए, इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, मन को बस में कैसे किया जाए, अपने इच्छाओं को बस में कैसे किया जाए, अपने अशुद्ध चेतना को शुद्ध कैसे किया जाए और दिल को शुद्ध कैसे किया जाए। तो यहां पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं श्लोक 30 में यच्चित विजये यत्त। जो व्यक्ति अपने चित्त पर विजय करना चाहता है, जो विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या क्या करना चाहिए, ये बातें इन 5 श्लोकों में बताया गया है। 30, 31, 32, 33 और 34। 34 जो श्लोक है ये उपसंहार है चित्त को बस में करने के लिए। तो पहला काम है यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने मन को या इन पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उनको वहां से हटाना चाहिए जहां पर ये लगा हुआ है। सिंपल आई दिस। मन कहां कहां लगा हुआ है सब लोग गिन लोग अपना। जहां जहां मन लगा है वहां से मन को हटाओ, ये पहला काम। जहां जहां इंद्रियां जिन जिन वस्तुओं में लगी हुई है वहां से उसको हटाओ, ये पहला काम। और मोटा मोटी सब मिलाकर कहते हैं स्यान संगो अपरिग्रह। मन कहां लगा हुआ है, संग में, निस्संग, निकृष्ट रूप से उन संग में, मुस्लिम पत्नी पुत्र परिवार, उसमें लगा हुआ है मन। और अन्य कहां लगा है, परिग्रह, हाय हाय में, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रुपया पैसा में इत्यादि पर। तो पहला चीज नारद जी कहते हैं कि जहां मन लगा है वहां से उसको हटाओ। और देखिए जब मन को और इंद्रियों को अपने चित्त को जब हटा लेंगे उन आसक्ति से तो व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है, गुरु बन जाएगा। त्रिपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम श्लोक में 6 बात बताए हैं उपदेशामृत में कि प्रथम श्लोक में 6 बात बताए। कौन बात है, वाचो बेगम। पहले किसको रोकना है, वाणी को रोकना है। इसका मतलब क्या, सिलाई कर दें, गुंगा बन जाए, जिह्वा काट दें, कैसे रोक सकते हैं वाणी को, कैसे, प्रसाद खाओ पहले तब वाणी शुद्ध होगी। प्रसाद खाओ और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये वाणी की शुद्धि का सबसे सरल तरीका है भगवत प्रसाद खाना और भगवान का नाम लेना, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रवचन ठीक है लेकिन पहले नाम लो, प्रसाद खाओ पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो पहला काम है वाचो बेगम, दूसरा क्या है? हैं? वाचो बेगम, उसके बाद क्या है? मनसा, मन के वेग को रोकना। मन कहां कहां जाता है रदास? उत्तर होगा मन कहां नहीं जाता है, या मन सर्वत्र जाता है। तो मन के वेग को रोकना, और मन के वेग को आर्टिफिशियली हम नहीं रोक सकते हैं। मन भौतिक है तो स्वाभाविक है कि वह वहीं जाएगा जहां उसे कुछ प्राप्त होता है। एक बार किसी हमसे प्रश्न किया था कि हम जप करना चाहते हैं लेकिन मन भाग जाता है तो क्या करना चाहिए? सब लोगों को ऐसा होता है। तो मैं कहा कि देखो मन जो है वो भौतिक है और आप जो हो आध्यात्मिक हो। जप करना आप चाहते हो क्योंकि आत्मा का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है। कृष्ण के नाम का जप करना भी कृष्ण का सेवा है। तो आत्मा चाहता है नाम जप करना, उसको आनंद नाम जप में आता है, लेकिन मन भौतिक है तो कहां जाएगा? भौतिक चीज में जाएगा। जब तक से मन को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे, भौतिक वस्तुओं को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये पेपर है, ये पुस्तक है, गीता भागवत ये पेपर पर छपा हुआ है, और नोबुल वगैरह किताब जो होता है वो भी पेपर पर छपा रहता है, लेकिन इसको हम प्रणाम करते हैं। और कर्मी मैगजीन को प्रणाम कोई करता है? न्यूज पेपर कोई प्रणाम करता है? नहीं ना। क्यों? दोनों पेपर है, क्योंकि एक का संबंध किससे हो गया है? कृष्ण से हो गया। लोहा लोहा है लेकिन लोहा को यदि आग में डाल दो तो कुछ समय के बाद वो लोहा लोहा नहीं रहेगा, हाथ से पकड़ोगे तो जला देगा हाथ को, वह क्या हो जाएगा? आग का रूप धारण कर लेगा। ठीक वैसे ही ये जो भौतिक मन है ये भौतिक है और भौतिक वस्तुओं की तरफ भागे जा बार बार जाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आदत लगाओ, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, लगाते रहो लगाते रहो। जब आदत पड़ जाएगा मन को तो मन भी यही करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो मन अपना काम करना नहीं छोड़ता है, हम क्यों अपना काम करना छोड़ेंगे? मन बार बार भाग रहा है भौतिक वस्तुओं में, हम क्यों अपना काम छोड़ेंगे? हम भी बार बार नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब मन का टायर पंचर हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। आज के श्लोक में ही बताया गया है, आज के श्लोक में वही टायर पंचर का बात बताया गया है। इस शब्द से अनिंधनम, जब ईंधन खत्म हो जाए तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अनिंधनम ईंधने नहीं है, जब ईंधन नहीं रहेगा तो गाड़ी कहां से चलेगी? तो मन के पास ईंधन नहीं रह जाएगा ना, तो अपने आप बस में आ जाएगा। तो वाचो बेगम मनसा, और तीसरा क्या है? क्रोध बेगम, क्रोध के बेग को रोकना। उसके बाद है जिह्वा बेगम, उदरा उपस्थ बेगम। तो जिह्वा बेग पेट का बेग और उपस्थ यानी जनेन्द्रिय का बेग, इन छह बेगों में से जो तीन बेग है, जिह्वा का बेग, पेट का बेग और जनेन्द्रिय सिक्स डिजायर का जो बेग है, बड़ा खतरनाक है। जिह्वा रे लालोच बॉस, इति उति धाय सिष्मा उदर परायण कृष्ण ही पाए। कृष्ण को नहीं पा सकते हैं जब इनका नौकर बने रहेंगे। हाँ जी, तो बात हो रहा था कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर, अपने चित्त पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसको पहला काम करना चाहिए कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार धन दौलत से अपने को वहां से हटाए। कहां जाए फिर? एको, अकेला चलो। भागवतम में वो कहानी है ना, उस इस लड़की का, जिसको देखने वाले आए थे तो घर में बेचारी के पास कुछ नहीं था, है तो उसे क्या करना चाहिए। तो धान कूटने लगी चावल निकालने के लिए, तो हाथ में उसके बैंगल था, तो आवाज आ रहा था। तो उसने सोचा कि लोग सोचे कि हम गरीब आदमी हैं, सब कुछ तो है लेकिन अभी रेडी नहीं है। तो बैंगल को तोड़ने लगी, करते करते दो आया, तो अभी खनखन कर आवाज कर रहा था, तो उसने तोड़ दिया। एक एक बैंगल रखा तब तो आवाज नहीं आया। यानी एको, अकेला, भजन में अकेला। लेकिन आज कला जन अकेला भजन नहीं हुआ है, कलयुग है ना, ये बात पहले का द्वारा बता है। तो एको विविक्त शरणो, एकांतिक भाव से अकेले विविक्त शरण, एकांत स्थान में हमें जाना चाहिए। घर गृहस्थी छोड़कर के एकांत स्थान यानी वृंदावन इत्यादि जगहों पर जाना चाहिए, जहां स्वाभाविक भजन हो सके। और वहां जाकर के घर नहीं बसाना चाहिए। कहते हैं भिक्षु भैक्षम इदासन मितासन, भिक्षु भौक्ष, भिक्षु के समान केवल शरीर पालन करने के लिए भिक्षाटन करते हुए मितासनम, मित आसन मतलब कम खाना, भिक्षा मांग करके जो मिलता है उससे पेट भरना चाहिए। अब घर द्वार छोड़ने का मतलब नहीं कि जाकर वृंदावन में कुटिया बना ले भजन करने के लिए, वो बात नहीं कर रहे हैं। और न तो जाकर के मधुकरी खा करके सोए, नहीं, उतना ही इतना से बॉडी एंड सोल काम कर सके। तो वैसे पवित्र स्थलियों में जाना चाहिए। पहला काम घर गृहस्थी छोड़ करके एकांत भाव से परिभ्रमण करना चाहिए, और जीवन यापन करने के लिए जितना जरूरी है कम से कम भिक्षाटन कर करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। देशे सुचौ समय राजन, महाराज युधिष्ठिर को यहां पर हिंट करते हुए नाराज जी कहते हैं, क्योंकि जो राजा ऐसा करेगा वैसा लोग करेंगे, और पहले के राजा लोग प्राय वानप्रस्थ ग्रहण करते थे। देशे सुचौ, सुचौ देशे, पवित्र स्थली यानी भगवान के मंदिर में या वृंदावन इत्यादि या गंगा इत्यादि के तट पर पवित्र स्थली पर जा करके वहां पर आसन लगाना चाहिए। यहां पर अष्टांग योग का वर्णन नारद जी किए हैं कि नदी के तट पर जाकर के आसन ज्यादा ऊंचा भी हो न हो, ज्यादा नीचा भी न हो, नदी किनारा हो अच्छा हो, वृक्ष का छाया हो वो अच्छा हो, और वैसे जगह पर जाकर के और आसन में विराजमान होकर के मुद्रा में स्थित होकर के नासिका के अग्रभाग पर, यहां पर देखो आप लोग देख सकते हो, अभी भी मैं तो उंगली से देख रहा हूं ना, बिना उंगली की देख सकते हो, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना, ये पहला चीज। भगवद गीता के छठे अध्याय में भी युग के लिए ये बात बताया गया है। उसके बाद प्राणायाम के जो तीन क्रिया है, यानी पूरक, कुंभक और रेचक। जय श्री श्री गौनिताय की जाए। इन तीनों प्रक्रिया से अपने सांस प्रश्वास को अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। इनहेलिंग, एक्सेलिंग एंड रिटेनिंग। पहले इनहेल कीजिए सांस को, सांस जब सांस पर ध्यान दीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए यानी मन कहां रहेगा, उस सांस के ऊपर। जब सांस ले रहे हैं तो एक नाक से सांस ले रहे हैं कि दोनों नाक से सांस ले रहे हैं? सांस पर ध्यान देने का मतलब क्या होता है देखना, जब हम सांस ले रहे हैं तो एक नाक से ले रहे हैं कि दोनों नाक से ले रहे हैं, और दोनों नाक में से कौन नाक अभी काम कर रहा है, राइट काम कर रहा है कि लेफ्ट काम कर रहा है, सूर्य नाड़ी काम कर रहा है, चंद्र नाड़ी काम कर रहा है, ये देखना। ये भी अवलोकन करना कि जब हम सांस ले रहे हैं तो वायु गर्म है कि ठंडा है। ध्यान देने का मतलब मन को वहां लगाना पड़ेगा ना, कि मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए, भूल करके भी नहीं। ये जो दो नाक है ना, पहरेदार हैं, हमारे शरीर के पहरेदार हैं दो नाक। पहरेदार सो जाएंगे तो क्या होंगे, चोर घर में आ जाएंगे। तो यदि नाक से सांस नहीं लोगे, मुंह से सांस लोगे, तो स्वाभाविक है कि शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आएगी। और मुंह से सांस लेने में कोई फिल्टर नहीं है, वो मक्खी और कछुआ सब अंदर चले जाएंगे, मुंह सांस लेने पर मच्छर जाए सब चले जाएंगे। नाक से सांस लेंगे तो उसमें फिल्टर है, और नाक से सांस लेंगे तो उतना ही लेंगे जितना जरूरी है, मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने और छोड़ने से आयु कम होती है। ये कुत्ते लोग देखते हैं ना, कुत्ते मुंह से सांस लेते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमें चाहिए नाक से सांस लेना, यही है अवलोकन, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। तो इनहेल करो, उसके बाद रिटेन करो। कितना देर तक रिटेन कर सकते हो, उसके बाद छोड़ो। यदि आप रिटेन कर रहे हो सांस को, तो देखो कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अवलोकन में किया जाता है, जब आप सांस लोगे तो प्रायः ठंडा वायु अंदर आएगा, उसके बाद वह ठंडा वायु आपके शरीर के अंदर जो दूषित वायु है उसके साथ वो मिक्स होगा, और तब वही वायु जब बाहर निकालोगे तो अवलोकन करना, वह गर्म होगा। जब लोगे तो ठंडा और निकालोगे तो गर्म होगा। यही है अवलोकन, इसे कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को लेते समय अवलोकन करें, सांस को रिटेन करें और बाद में सांस को छोड़ें। इस प्रकार से योगी इन तीन क्रियाओं में जब मास्टर हो जाता है, तो शरीर में उसके पास कोई गंदगी नहीं रह जाती है। जितने भी टॉक्सिन है वह रिटेंशन के द्वारा मेल्ट कर करके उसे एक्सेल करता है, बाहर निकाल देता है, तब कोई तकलीफ नहीं रहेगा। आज जो भी शरीर में दर्द होता है, चाहे घुटना में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, कहीं पर, इस दर्द का एकमात्र कारण है कि अशुद्ध वायु वहां पर इकट्ठा हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है अशुद्ध वायु का। लेकिन योगी लोग उसको क्लियर कर देते हैं, किसके द्वारा, रिटेंशन के द्वारा। सांस लेकर के रोकते हैं तो जितना देर तक रोकना, जब रोकोगे ज्यादा देर तक तो देखना कि व्यक्ति छटपटा जाता है, सांस मुंह हाथ बंद करो आदमी मर भी जाएगा ना, है? जब रोकोगे तो उसमें फोर्स होता है उस वायु में, तो वायु वहां जाएगा अपने आप। भगवान क्या सुंदर साइंटिफिक सिस्टम बनाए हैं कि वायु अपने आप चला जाएगा और जहां पर जो रुका हुआ वायु होगा उसको बूम पेनिट्रेट करेगा, क्लियर कर देगा और फिर गंदा वायु को बाहर निकाल देगा। तो यह प्राणापानौ सरिरुद्ध्या पूरकुंभ रेचक, तो ये बड़ा ही साइंटिफिक व्यवस्था है। और इस प्रकार से करते 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 एक समय आएगा कि अष्टांग योग में आसन के बाद प्राणायाम और प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, निरोध या निर्वाण, ये तीनों एक ही शब्द है। यहां पर इस श्लोक में निर्वाण शब्द आया हुआ है। निरोध का भी मतलब वही होता है सेसेशन, प्रत्याहार का मतलब सेसेशन और निर्वाण का मतलब भी सेसेशन। भागवतम का एक तत्व है निर्वाण या निरोध, निरोध मुक्ति आश्रय। दशम स्कंध जो भागवतम का है वह निरोध है, यानी उसके बाद और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से योगी जब इस सांस को, सांस के प्रक्रिया को रेगुलेट कर लेता है तो जो मन है वह कभी बाहर नहीं जाता है, और कभी कभी यदि बाहर जा भी चला भी जाता है तत उपराहृत्य हृदय रुद्ध्यान अक्षनई बुधई। तो इस प्रकार से कभी कभी चला भी जाता है तो योगी धीरे से उस मन को पुनः लाता है और ला करके उसको हृदय में स्थित कर देता है। यानी ये शुद्ध चित्त जो है वह हृदय में स्थित हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है तो मन वहां लग जाता है। वैसे ही उसी प्रक्रिया को कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, ये हरे कृष्ण महामंत्र भी वही काम करता है जो अन्य युगों में प्राणायाम के द्वारा होता था। क्योंकि प्राणायाम का मतलब है आपके वायु को आने रुकने और जाने पर ध्यान करना, और हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में कहा जाता है ध्यान करो है? सुनो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सुनते रहेंगे तो इस प्रकार से मन में आदत बढ़ जाएगी, मन में आदत बढ़ जाएगी सुनने का, तो मन अन्य विषय वस्तुओं के विषय में नहीं सुनेगा। तब इस श्लोक में यहां कहते हैं एवं अभ्यस्यतः, अभ्यस्त हो जाता है। एवं मतलब इस प्रकार से वह मन अभ्यस्त हो जाता है, उसे प्रैक्टिस हो जाती है। पहले शुरू शुरू में मन नहीं लगता है लेकिन करना चाहिए। एक बार गर्ग मुनि प्रभु प्रभुपाद जी से कहे शुरू शुरू में कि स्वामी जी आप कहते हो कि आपको हम लोग प्रणाम करें लेकिन हमें आपको प्रणाम करने का मन नहीं कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा कीप डूइंग, करते रहो मन करने लगा, एक दिन करते रहो मन करने लगेगा। तो वैसे ही नाम जपते रहें तो एक दिन आएगा कि मनोत्रा इति मंत्र, जो मंत्र है वो मन को बांध देगा, उसको पछाड़ देगा, यही मंत्र। तो वही बात यहां पर नारद जी कहते हैं एवं अभ्यस्यतः, इस प्रकार से अभ्यस्त होकर के प्रैक्टिस करते करते अभ्यास करते करते क्या होगा, कालेन कालांतर में एवं अभ्यस्यतः चित्तम, अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे करते हैं तो चित्तम मतलब मन क्या हो जाएगा, कालेन अल्पीयसा कम ही समय में क्या होगा कि अनिशतस्य निर्वाणम, नित्य निरंतर ऐसा करते रहेंगे तो सेशन का स्टेज आ जाएगा, निर्वाण का स्थिति आ जाएगा, यानी मन और इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि अब मन के पास कोई विषय वस्तु है नहीं। मन के पास यदि है भी कुछ तो वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और कुछ है ही नहीं। उदाहरण दिया गया ठीक वैसे ही, आग तब तक जलता है जब तक से ईंधन होता है, ईंधन खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगा, बताया गया ना, याति अनिंधनम वहनिवत, वहनिवत वह वहनी वह अग्नि बुझ जाता है कब, अनिंधन जब ईंधन नहीं रहता है तब। ठीक वैसे ही मन के पास कोई विषय नहीं रह जाएगा, मन के पास एक ही विषय रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जैसे आज क्या परिस्थिति हो गया है कि मन विषयों को नहीं छोड़ रहा है, आज विषयों को मन नहीं छोड़ रहा है, और एक ऐसा दिन आएगा कि यही मन हरे कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। केवल प्रैक्टिस करना है, अनिंधन न रहे बांस न बाजे बांसुरी, खत्म कर दो, प्रैक्टिस करते रहें और इस प्रकार से आत्मा को शांति की प्राप्ति हो सकती है। सहज तरीका है, भगवत गीता में तीन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे कोई शांति को प्राप्त कर सकता है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 71 में विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारम सहमे शांतिम अधिगच्छति। कहते हैं विहाय कामान सर्वान, समस्त कामनाओं को त्याग दो। लेकिन कैसे कामनाओं को त्यागे, अल्टरनेटिव नहीं भगवान बताते हैं, शुद्ध रूप में कहते हैं विहाय कामान सर्वान तुम्हारा चर्ची निष्प्रिय, निष्प्रिय हो जाओ, डिटैच हो जाओ। लेकिन कैसे डिटैच होना चाहिए प्रैक्टिकल नहीं बताया गया है। निर्ममो निरहंकारम स्वामे शांति मत गच्छति, कोई ममता मत रहो रखो, अहंकार मत रखो, इस प्रकार शांति को प्राप्त करोगे। लेकिन यहां पर जो 5:29 में प्रैक्टिकल बात बताया गया है, भोक्तारम्भ जगतपसाम, भगवान सब कुछ के भोक्ता हैं, यानी जो कुछ भी करें हम भगवान को अर्पण करें, ये प्रैक्टिकल है। हम खाते हैं, कोई ऐसा है जो कभी नहीं खाता है या पीता है, कोई कुछ ना, हम हवा पीकर रह जाते हैं तो पीना ही होगा ना, तो जो भी खाए पिए उन सबको भगवान को अर्पण करें, क्योंकि भगवान भोक्ता है। भोक्ता आरम युक्त सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी लोक के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, इसलिए उन्हें हम प्रणाम करें, उनको सम्मान करें। और सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सबके शुभचिंतक और हितैषी हैं। जो व्यक्ति ये तीन बात जान जाता है वह शांति को प्राप्त करता है। और उसके बाद 12वें अध्याय के श्लोक 12 में बताते हैं भगवान, ध्यानात कर्म फल त्यागत त्यागा शांति अनंतरम। ध्यानात कर्म फलम त्याग, कर्म फल को यदि त्याग दो, ध्यान से भी अच्छा है कर्म फल, कर्म करना, कर्म के फल को त्याग देने से शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है, यानी ऑल टुगेदर शांति की प्राप्ति तब होगी जब मन भगवान में स्थिर हो जाएगा तब, और मन भगवान में स्थिर होगा प्रैक्टिकल काम करने से, और जो प्रैक्टिकल काम है उसे कहा जाता है भक्ति योग। आज श्रीपाद माधवाचार्य का तिरुभाव तिथि है। माधवाचार्य भक्ति योग के प्रणेता हैं। पहले ज्ञान मार्ग था, माधवाचार्य ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ नहीं माने, माधवाचार्य भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ माने। माधवाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में कर्नाटक के एक ग्राम में हुआ था, जिस ग्राम का नाम था पाजक। यह उड़पी से नजदीक गांव है। उनके पिताजी का नाम था मध्यगे भट्ट था, माता का नाम था वेदवती। माधवाचार्य के एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई। माधवाचार्य का जब जन्म हुआ, जन्म से पहले ही तय गया है कि उस समय नास्तिकवाद का खूब प्रचार चल रहा था, निर्विशेष शून्यवाद का खूब प्रचार चल रहा था, वैष्णवता नाम का कोई चीज नहीं था। तो निर्विशेष शून्यवादी जो लोग होते हैं वे लोग देवी देवताओं का को मानते ही नहीं है। जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो देवी देवता को नहीं मानते हैं। तो देवी देवताओं को उनकी आहुति नहीं मिल रही थी, कहीं भगवान का नाम नहीं हो रहा था, सब देवता लोग बड़े दुखी थे। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए कि जन कल्याण के लिए जिस मार्ग को मैंने प्रशस्त किया वह मार्ग ध्वस्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से अपना रोना रोए कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है भूलोक में, वहां पर सब लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, सब लोग निर्विशेष शून्यवादी बनते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान का कोई स्केड्यूल नहीं है अभी इस धराधाम पर आने के लिए, लेकिन होगा क्या है, तो खत्म सब हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना किए और भगवान से कहे कि प्रभु हम जानते हैं कि अभी स्केड्यूल नहीं है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। सब देवता लोग वहां पर थे, 33 कोटि देवता थे। भगवान विष्णु उन देवताओं पर दृष्टिपात करने लगे कि कौन ऐसा देवता है जो मेरे इस संदेश को पहुंचा सके। तो उनकी दृष्टि वायु देवता पर पड़ी। भगवान बहुत देर तक वायु देवता को देखते रहे और अपना शक्ति संचारित कर दिए वायु देवता में। वायु देवता में अपना शक्ति संचारित कर दिए और उन्होंने वायु देवता को आदेश दिया कि आप जाकर के ब्रह्मा जी के दुख को दूर कीजिए, यानी भक्ति मार्ग का प्रचार कीजिए। उड़पी में शिव जी का एक मंदिर है। भक्ति विनोद प्रभु कहाँ गया, नाम क्या है मैं भूल रहा हूं, बहुत पहले का है, एक और दूसरा भी है। भक्ति विनोद है अनंतेश्वर। हाँ भक्ति विनोद ठहरो यार, मैं साउथ से, मैं नॉर्थ इंडिया का हूं, साउथ का नाम भी पढ़ने में तकलीफ होता है, बताओ थोड़ा। हाँ मुकुंद नहीं दिया, ओके। अनंतेश्वर मंदिर, तो वहां पर एनुअल फंक्शन होता था, बहुत लोग आते थे। तो मालवाचार्य के पिताजी वर भी वहां पर आए थे। तो एक व्यक्ति उसमें भगवान शिव का आसक्ति आ गया या घोष पकड़ लिया कुछ, और फटाफट चढ़ गया वो ध्वज के ऊपर और लगा चिल्लाने कि एक बहुत बड़ा महापुरुष का जन्म होने वाला है जो भक्ति योग का प्रचार करेगा। एनीवे, इस प्रकार से कालांतर में माधवाचार्य का आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। माधवाचार्य बचपन से इनको भीम का अवतार भी कहा जाता है, वायु का अवतार कहा जाता है, हनुमान का अवतार कहा जाता है। तो भीम को खाने पीने में बड़ी रुचि थी, वैसे ही माधवाचार्य को बहुत भूख लगता था। एवरी हाफ एन आवर उनको भूख लगता था। कभी कभी अपने मां का स्तन पान करते थे तो मां के स्तन में उतना दूध नहीं होता था कि उनका पेट भर सके। अपने मां के स्तन को दबाने लगते थे, दूध निकलता ही नहीं था बेचारे। फिर मां थोड़ा गई इधर उधर, फिर आधा घंटे के बाद फिर भूख लग गया है, उन्हें बहुत भूख लगता था। एक दिन की बात है, माधवाचार्य छोटे बालक थे और मां को पड़ोस में कुछ काम के लिए जाना था, तो उन्होंने माधवाचार्य की जो बहन थी बड़ी, उसको कहा कि बेटी तुम इसका देख रेख करना। उनका नाम था वासुदेव, बचपन का नाम था, वासुदेव का देखभाल करना, मैं आ रही हूं। जब वो जा रहे थे, जब जा रही थी माताजी, तो देखे मां तो जा रही है तो इनको क्या कि भूख लग जाएगा तो फिर कौन ये करेगा, तो लगे रोने। मां के जाते ही लगे रोने, मां चली गई और वे रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बहन बेचारी प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से इसको पेसिफाई किया जाए, सांत्वना दिया जाए, लेकिन कहा है कोई, बहुत भूख लगा है। बेचारे खिड़की से देख रही है कि मां आ रही है कि नहीं आ रही है, मां नहीं आ रही है, और ये जोर से रो रहे थे। तो वहां पर एक गोनी में चोकर रखा हुआ था, जो गाय को खिलाते हैं ना चोकर। तो उस लड़की ने, अभी इनका अन्न प्रसंस्थान संस्कार नहीं हुआ था, अभी अन्न नहीं दिया गया था, लेकिन थोड़ा बड़े हो गए थे, समय आ गया था। तो उस लड़की ने क्या किया कि चोकर जो था, वैसे जो बैग था खड़ा किया था, उसको गिरा दिया। बच्चों को थोड़ा चाहिए कुछ खेलने के लिए, उसने गिराया ताकि ये खेले, और वहां तब तक माधवाचार्य उधर चले गए और ये बहन बाहर गई मां को देखने के लिए। तब तक से माधवाचार्य पहुंच गए इस गोनी के बीच में और लगे खाने, चोकर खाने लगे, और इस प्रकार से पूरा चोकर खा गए। 40 किलो का चोकर था, कब गोनी था, खा गए और उस बैग में समा गए। जब मां आई तब कहां गया, कहां गया, कहां गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है कहां गया, तो देखिए उसके अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। 40 किलो चोकर थे नहीं मिले, गाय को खाने वाला भोजन खा गए। इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत से माधवाचार्य कार्य किए। एक बार जब वो 1 साल के थे तो घर से बाहर निकलने लगे थे, तो एक बैल था, वो बैल का पूंछ पकड़ लिए, और जब बैल का पूंछ पकड़े तो माधवाचार्य वायु के अवतार हैं, और जोर से पकड़े, वास्तव में बैल के ऊपर चढ़ना चाहते थे, तो बैल का पूंछ पकड़े और बैल चला भाग, और ये पूंछ छोड़िए नहीं रहे हैं, जाते जाते वो जंगल तरफ चला गया। जब मां घर काम कर देखी तो बेटा कहां गया, पता नहीं, सब ढूंढ रहे हैं। और वे तब तक से बैल का पूंछ पकड़े रहे जब से लोग पहुंचे नहीं, ढूंढते ढूंढते बैल भाग रहा है और वो पकड़े हुए हैं, लेकिन उनके शरीर में कुछ भी खरोच वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वे घटनाएं किया करते, लीलाएं किया करते थे माधवाचार्य जी। एक समय माधवाचार्य के पिताजी बैठे हुए थे, बड़े दुखी थे। तो माधवाचार्य उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन का व्यवस्था कीजिए। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, आज हम लोग उपवास रहेंगे। अब माधवाचार्य के लिए उपवास नाम का शब्द बड़ा अजब लगता था। उपवास रहेंगे कहा, क्यों, कारण क्या है? कहा कि अभी अभी एक नया बैल खरीदे हैं ना, उस बैल का पैसा देना बाकी है और मिस्टर सेठी बाहर खड़े हैं पैसा के लिए। पहले तो मैं पैसा का व्यवस्था करूं। मैं कर्ज के रूप, कर्ज कहा जाता है कि फायर, डेब्ट एंड डिजीज, ये तीनों का तुरंत देखभाल करना चाहिए। एक कर्जा के साथ में हम कैसे जी सकते हैं? पहले उसका कर्जा चुकाएं, बाद में हम लोग खाएंगे। माधवाचार्य ने पिता से कहा, आप चिंता मत करो, जाओ मां को बोलो भोजन बनाने के लिए, मैं देखता हूं उसे कर्जा का। तो माधवाचार्य गए, इधर उनके पिताजी गए मां को बोलने के लिए कि भोजन बनाओ, कम तुम लोग खा लो, मैं उपवास करूंगा, जरा पे नहीं करूंगा, कैसे मैं खा सकता हूं। माधवाचार्य गए, द्वार पर सेठी जी बैठे हुए थे अपना पैसा वसूल करने के लिए। माधवाचार्य उनको बुला करके लाए। माधवाचार्य बचपन में उनको अच्छा एक गुण था या जो भी था, इमली का बीज बिटोरते थे बच्चों खेलने के लिए, कुछ भी, कोई पत्थर बिटोरता है, कोई गोली बिटोरता है, वो इमली का बीज, हम लोग रेण का बीज बिटोरते थे। रेण समझते हैं? रेण को क्या बोलते हैं? है? रेण कहते जहां रुक्ष वृक्ष ना था रेण प्रधान, रेण किसे कहते हैं? उसका तेल बड़ा महंगा होता है, हा? अरंडी, हाँ कोई बोल दिया अरंडी, अरंडी है, अरंडी है, बड़ा सॉफ्ट होता है, तेल निकलता है बहुत। एनीवे हम लोग वो बिटोरते थे। तो माधवाचार्य इमली का बीज बिटोरते थे। तो उस व्यापारी को लेकर के आए पेड़ के नीचे, और नहीं जाकर के जहां इमली का बीज बिटोर रखे थे वो पूरा लेकर के आए। माधवाचार्य देखने में बड़े सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, और छोटा बच्चा है तभी अच्छा लगता है। तो वे कहे कि अब वो कितना चाहिए पैसा, तो बताए कितना पैसा चाहिए, ठीक है हाथ खोलो, और उसके हाथ पर वो इमली का बीज दे दिए। तो वो व्यापारी सेठी समझा कि बच्चा दे रहा है, ले लेता हूं, उसे अच्छा लग रहा था कि बिजली, वो देख रहा था कि इमली का बीज है, वो दे रहा है, तो इमली के बीज से क्या होगा, लेकिन फिर बच्चा दे रहा है तो अच्छा लगा, वो ले लिया। और जो ही इमली का बीज उसके हाथ पर आया तो वो पूरा इमली का बीज सोने का क्वाइन बन गया, गोल्ड क्वाइन बन गया। और गोल्ड क्वाइन इतना हुआ कि वो समझ में नहीं सकता था, बहुत ज्यादा गोल्ड क्वाइन हो गया। फिर वो बहुत प्रसन्न चित्त से घर गया और आकर के फिर बाद में माधवाचार्य के पिताजी को बताया कि आपका बेटा तो हमको बहुत ज्यादा दे दिया है। फिर दूसरे बार आया कुछ और मांगने के लिए, और इस बार माधवाचार्य की कृपा से उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे कहानियां हैं माधवाचार्य के जीवन संबंधी, उनके दीक्षा संबंधी। माधवाचार्य संन्यास लेना चाहते थे, बहुत कम ही अवस्था में, 7 साल की अवस्था में ही वे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता सब कुछ कंठस्थ कर लिए थे, भागवतम कंठस्थ कर लिए थे। एक बार उनकी मां और उनके पिताजी, नहीं माता जी के साथ में वो गए थे गांव के कहीं अन्यत्र, मेला लगा था वहां पर गए थे, और वहां जहां भी जाते थे कोई मंदिर रहता माधवाचार्य वहां पहुंच जाते थे। तो एक मंदिर में गए, वहां सत्संग ऐसे ही चल रहा था, और एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे उपनिषद इत्यादि के, और वे उपनिषद का प्रवचन कर रहे थे, लेकिन वो गलत प्रवचन कर रहे थे। तो माधवाचार्य बीच में ही उठ करके
उनका वॉयस भी भीमसेन का वॉयस था ना, जोर से बोले आप गलत बोल रहे हो, व्यासदेव इत्यादि या कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे वर्णन किया गया है, ऐसे वर्णन किया गया है। इस प्रकार से उसको प्राप्त कर दिए। फिर बाद में मां के साथ आए तो पिताजी से मिले, तो पिताजी से पूरा बात बताए और पिताजी से कहा, पिताजी मैं ठीक बोल दिया ना, मैं ठीक बोला ना, तो हां बेटा तूने ठीक बोला। तो कृष्ण कथा कुछ था जो कि गलत बोल रहे थे। जब माधवदास थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए तो स्कूल में जाते थे, तो वो लोग वही बात पढ़ाते थे, तीत अंति सीत थी आमी आव आम पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ती पढ़त पठत पठामी पठावा पठाम, कई कहीं चीज बार बार पढ़ाते हैं, तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था और भूख लगता था। इधर पढ़ाई हो रही तो जंप कर गए, बम पहुंच गए कहां पर, खाने के लिए है, खा करके आते थे। तो एक दिन टीचर को बहुत गुस्सा आया, कहा जब क्लास चलता है तो चला जाता है तू और बाद में आता है तो क्या सीखेगा, तू होमवर्क भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। कहता है गुरुजी आप तो एक ही बात को बार बार पढ़ाते हो, ये सब मैं जानता हूं, कुछ नया चीज तो बताओ, एक ही बार बताते हो। तो गुरु को बड़ा गुस्सा आया, कहा तो बड़ा होशियार बन रहा है, कहा ठीक है बताओ अभी क्या पढ़ाया गया। तो जो बताया गया था माधवाचार्य वो तो कहिए दिए, उसके आय का भी बात कह दिए, उसके आय का ही बात कह दिए। तब जो गुरुजी थे उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये सब कैसे जान गया। लगता है कि कोई टीचर आता है घर पर पढ़ाने के लिए, ट्यूशन करता है उधर घर पर जाकर के। एक बार अपने मित्रों के साथ में माधवाचार्य खेल रहे थे, एक असुर था वो सर्प के रूप में था, और वह आकर के माधवाचार्य को डसा। माधवाचार्य खेल में लगे हुए थे, हमें इतना सर्पीला इतना जहरीला सर्प था कि डसा तो लोग मर जाते थे। माधवाचार्य को उसने डस दिया, लेकिन वो खेल में इतने मस्त थे, सोचे कि ये चींटी काट रहा है परेशान कर रहा है, और अपने अंगूठा से उसको दबा करके और मार दिए, सांप को मार दिए अंगूठा से दबा कर। और जब ये मार रहे थे माधवाचार्य उस सर्प को और खेल में लगे हुए, तो उस समय उनकी मां बार बार बुलाती थी, माधव माधव माधव, वो नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो असुर को मारने में लगे थे। हमें लगता है कि अंगूठा दबा दिए लेकिन असुर को मार रहे थे, समझ लगेगा ना असुर था। तो जब सुने कि मां बुला रही है तो तुरंत जंप किए बूम और पहुंच गए मां के सामने आंगन में। आज ही माधवाचार्य के पैर का छाप वहां पर है। माधवाचार्य एक बार उनके पिताजी उनके ननिहाल गए माधवाचार्य को लेकर के, तो और बहुत सगे संबंधी लोग आए थे, विभिन्न प्रकार का कोई फंक्शन था, और स्त्रियां आपस में बात करने लगती है, पुरुष लोग आपस में बात करने लगते हैं। माधवाचार्य वहां जितने विष्णु के मंदिर थे वो दर्शन करते करते वहां से वो छलांग लगाए और पहुंच गए उडुपी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, और वहीं ध्यान मग्न होकर के और भगवान शिव का स्तुति कर रहे थे। इधर सब लोग ढूंढ रहे हैं कि बालक कहां गया, बालक कहां गया। माता जी पिताजी उनकी मां से पूछे तो मां कहती कि मैं नहीं जानती हूं कहां गया, यहीं पर था, क्योंकि वो तो बिजी थी अपने सखियों से बात करने में, ये अपने संबंधियों से बात करने में। तब किसी ने कहा दक्षिण दिशा की तरफ गया, तो उनके पिताजी गए, जब उडुपी पहुंचे तो भगवान शिव के पास बैठे हुए माधवाचार्य को प्राप्त किए। माधवाचार्य का मन धीरे धीरे घर से अब बाहर निकलने लगा। जब वे 5 से 7 साल के थे तो वे वहीं पर बगल में एक आश्रम था, और वहीं पर जाकर के प्रत्येक दिन वे कथा सुनते थे, कथा सुनते थे। वहां पर एक अच्युत अच्युतानंद या अच्युत प्रकाश नाम के एक महान वैष्णव थे, उनके पास जाकर के ये संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। उनके पिताजी उनके लिए कन्या ढूंढ रहे थे विवाह के लिए, और पिताजी से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं और मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो माताजी बार बार कहती थी कि तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम संन्यास लोगे तो क्या होगा। तो माधवाचार्य ने ऐसे कई चमत्कार तो किए ही थे, उनके पिताजी पर जो डेब्ट था, कर्जा जो था, कर्जा चुका देना और सब बहुत काम किए थे। मां से दो बात कहे कि मां यदि आप मुझे देखना चाहती हो तो मैं संन्यास लेने का आदेश दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे कभी नहीं दे सकती हो। और जहां तक आपका देखभाल करने का बात है, मैं तब तक से घर को नहीं छोड़ूंगा जब तक से कोई दूसरा संतान आपको उत्पन्न न हो जाए, कोई मेरा भाई उत्पन्न न हो जाए जो आपको देखभाल करे। तो मानो ये भी हो सकता है कि भाई उत्पन्न हो, पता नहीं वो भी संन्यास लेगा तो फिर क्या होगा, मुझ पर तकलीफ होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको किसी प्रकार का तकलीफ होगा यदि आप मुझे देखना चाहोगे, आप केवल मुझे पुकारना और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो वहां पर वे अच्युतानंद के आश्रम में या अच्युत प्रकाश के आश्रम में रहने लगे, घर छोड़ दिए, लेकिन प्रत्येक दिन आते थे माता को दर्शन देने के लिए। कालांतर में उनकी मां गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, इनके भाई जन्म लिए। उसके बाद माधवाचार्य को उनके माता पिता ने परमिशन दे दिया। इस प्रकार से माधवाचार्य संन्यास लेकर के परिभ्रमण करने लगे। वे बंगाल, काशी होते हुए उत्तराखंड गए, बद्रीनाथ गए, वहां पर व्यासदेव का दर्शन किए, व्यासदेव से दीक्षा ग्रहण किए। उसके बाद द्वारका होते हुए परिभ्रमण, पूरे पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे थे। एक समय माधवाचार्य काशी में थे और उनकी मां उनको पुकारी, देखने की इच्छा हुई और कहा जाता है कि माधवाचार्य काशी से जंप किए, बनारस से जंप किए और पहुंच गए उड़पी। एक जंप वायु के अवतार है ना, पहुंच गए। तो इस प्रकार से माधवाचार्य के विषय में बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन घड़ी का सुई तो आगे बढ़ते जा रहा है। एक कथा और मैं कहूंगा, वह है माधवाचार्य उड़पी मठ का स्थापना किए। उड़पी मठ क्या नाम है ठाकुर जी का? हाँ, उड़पी कृष्णा लोग कहते हैं, उड़पी कृष्णा। ये जो ठाकुर जी हैं उड़पी में, इनकी रचना स्वयं रुक्मिणी जी की थी। भगवान कृष्ण के विरह में रुक्मिणी जी एक सेकेंड नहीं रखती थी, तो भगवान के पास यही रोती रहती थी कि मैं आपके विरह को सहन नहीं कर सकती हूं। तो भगवान अपने स्वरूप को रुक्मिणी जी को दिए थे, जो उड़पी कृष्ण है ना, ये कृष्ण के द्वारा दिए गए स्वरूप हैं रुक्मिणी जी को, और रुक्मिणी जी इनका पूजा करती थी। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तब कलयुग में आज से 800-900 साल पहले एक गुजरात का व्यापारी समुद्री मार्ग से जहाज लेकर के आ रहा था, नमक का, नमक लोड हुआ था, और जहाज को बैलेंस करने के लिए द्वारका में आज भी है गोपी तालाब है, तो वहां का जो पत्थर होता है ना वो गोपी चंदन का होता है। तो उस गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा पत्थर अपने नौका पर रख लिया था, नौका को बैलेंस करने के लिए। उसकी नौका आई, समुद्री रास्ते से आई उड़पी और वहां आकर के नौका फंस गई। और उस समय बहुत घमासान, चारों तरफ से बादल छा गए, समा तो ऐसा बना कि घनघोर वर्षा होने वाला है। बेचारा व्यापारी बड़ा दुखी हुआ, ये वर्षा होगा, नमक लदा हुआ है, सब नमक गया काम से, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। बेचारा रोने भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तब तक से माधवाचार्य खेलते कूदते पहुंच गए, अपने ठाकुर जी आ गए हैं उनका अगवानी करने के लिए पहुंच गए समुद्र के किनारे। बेचारा बहुत दुखी था, वहां पर कोई आदमी नहीं था, तमाचार थे, तो उसने कहा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। चिंता मत करो, चलो हम लोग धक्का देते हैं जहाज को। माधवाचार्य गए, जहाज को धक्का दिए, जहाज चलने लगा। तो सौदागर बड़ा खुश हुआ माधवाचार्य से और कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं क्या दे सकता हूं बताइए क्या चाहिए। तो माधवाचार्य ने कहा कि जो आपने पत्थर रखा है ना अपने जहाज पर बैलेंस करने के लिए, उस पत्थर को हमको दे दो। सौदागर बड़ा खुश हो गया, चलो पत्थर से ही बलाय टल गया है, रुपया पैसा नहीं मांगा, पत्थर दे दिया। और इस प्रकार से माधवाचार्य पत्थर को लेकर के आए और बाद में उसका अनावरण किया गया, तो उसमें से निकले भगवान कृष्ण, जो आज रुक्मिणी कृष्ण, सॉरी उड़पी कृष्ण के नाम से विख्यात है। माधवाचार्य का सिद्धांत के विषय में थोड़ा हम बात करेंगे दो तीन मिनट, उसके बाद में कोई प्रश्न उत्तर। देखिए, भगवान बुद्ध आए, उस समय वेद के नाम पर लोग पाप करते थे, तो उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया, शून्य जीरो। उसके बाद आए शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, अद्वैत मतलब दो नहीं एक। उसके बाद आए माधवाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। तो जीरो के बाद क्या आता है, एक, उसके बाद क्या आता है, दो, बाद में और बढ़ने लगता है। तो भगवान बुद्ध जीरो का प्रचार किए, शंकराचार्य एक का प्रचार किए और माधवाचार्य दो का प्रचार किए। इन लोगों का जो सिद्धांत है, शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, भक्तों को यह जानना चाहिए, वो कहलाता है अद्वैतवाद। दो नहीं एक हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, सो हम वही हैं। उसके बाद माधवाचार्य आए तो उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपाद किया है, मतलब भगवान और जीव ये दो हैं। ये दो हैं तो भगवान और जीव एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। जीव जो है वह डिपेंडेंट है और भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र और परतंत्र। इस सच्चाई को वे प्रकाशित किए। उसके बाद आए विष्णु स्वामी, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन कराया। उसके बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। विष्णु स्वामी द्वैताद्वैत का और निम्बार्काचार्य शुद्धाद्वैत का। इस प्रकार से ये लोग सिद्धांत को, सत्य को प्रकाशित किए। तो माधवाचार्य का जो बात था वे द्वैतवाद का, जीव और ईश्वर में भेद है। प्रमाण में माधवाचार्य बारहों प्रमाण में से तीन प्रमाण को श्रेष्ठ माने, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। लेकिन इन तीनों में भी शब्द प्रमाण को मध्वाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ माना, और शब्द प्रमाण जो है वो है गीता और भागवत। इसलिए आज भी कोर्ट में गीता पर कसम खाते हैं, शब्द प्रमाण पर उनको उन्होंने श्रेष्ठ माना। अब अस्वतंत्र और स्वतंत्र के भेद को लेकर के भगवान और जीव, भगवान स्वतंत्र है, जन्मादस्य तन्न आदितरतः चार्थे सविज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट है, जहां की जीव जो है वो परतंत्र है या अस्वतंत्र है, भगवान पर डिपेंडेंट है। हम इनडिपेंडेंट नहीं है, हम इंटरडिपेंडेंट है। भगवान क्या है? इनडिपेंडेंट है। तो एक भेद तो ये बताए, छह प्रकार के भेद को बताए माधवाचार्य। एक तो भगवान और जीव में भेद है, क्या भेद है? भगवान इनडिपेंडेंट है और जीव डिपेंडेंट है। उसके बाद जीव और जड़ में भेद बताए, जीव और जड़, जीव मतलब जीवात्मा और जड़ मतलब जड़ वस्तु या प्रकृति। इस दोनों में जो जीव है वो इंडिपेंडेंट है और जो जड़ है वह डिपेंडेंट है। ये जो शरीर है यह डिपेंडेंट है किस पर? सोल के ऊपर। ये सोल शरीर को छोड़ दे तो आंख देखेगा, कान काम करेगा नहीं। तो माधवाचार्य ये छह भेद को प्रकाशित किए। एक है जीव ईश्वर जीव भेद, ईश्वर और जीव में भेद है। दूसरा जीव जीव भेद, एक जीव और दो जीव, मैं यहां पर हूं और समकृ प्रभु हैं, या समकृ प्रभु यहां पर हैं, नीलमणि प्रभु पीछे बैठे हैं, दोनों न्यूजर्सी से हैं, लेकिन दोनों में भेद है, दो जीव हैं। और तीसरा है वह है ईश्वर जड़ भेद, जड़ भेद। लकड़ी से ही यह टेबल बना है, और लकड़ी से ही आसन बना है। एक को क्या कहते हैं? टेबल। और एक क्या कहते हैं? आसन। दोनों भेद हो गया ना। तो इसी को आगे प्रकाशित किए, जीव जीव भेद नहीं, ईश्वर जीव भेद, ईश्वर जड़ भेद, जीव जीव भेद, जड़ जड़ भेद, जीव जड़ भेद, जड़ ईश्वर भेद। तो इस प्रकार से इन छह भेदों को वो अच्छी तरह से बतलाए। और यही है ब्रह्मा जी का संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। और इसी बात को भगवान चेतन महाप्रभु, माधवाचार्य के सिद्धांत को लेकर के भगवान चेतन महाप्रभु जो अचिंत भेद अभेद तत्व का प्रकाशन किए, क्योंकि माधवाचार्य ने जो सिद्धांत दिया द्वैतवाद का वो आंशिक साथ, जीव और ईश्वर भेद है लेकिन किस रूप में भेद है इस बात को नहीं बताए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको क्लियर किए कि जीव और ईश्वर में भेद है, किस में? मात्रा में, न कि गुण में। इसलिए अचिंत भेद अभेद तत्व ये हमारे चिंता से परे है, लेकिन फिर भी भेद और अभेद हैं, अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। मात्रा में अंतर है, भगवान विभू हैं और हम लोग अणु हैं, लेकिन गुण में भी अंतर नहीं है। भगवान का स्वरूप भी है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और हमारा भी स्वरूप जो है सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब ज्ञानवान, और आनंद मतलब आनंद रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। तो भगवान पूर्ण है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि यहां पर 10 टन लकड़ी में आग लगा दो और एक मोमबत्ती में आग लगाओ, दोनों आग हैं। 10 टन लकड़ी वाला आग वो भी आग है और मोमबत्ती वाला आग वो भी आग है, और दोनों के सामने पंखा चालू करो तो क्या होगा? 10 टन लकड़ी वाला क्या होगा? भभक जाएगा ना, और मोमबत्ती क्या हो जाएगा? तो दोनों में देखा जाए तो गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों में हीट और लाइट है। 10 टन लकड़ी वाला में भी आग में भी हीट है और लाइट है, और मोमबत्ती में भी हीट और लाइट है, लेकिन दोनों के मात्रा में भेद है। एक का मात्रा है कि पंखा चलाने से बुम भभक जाता है और एक बुझ जाता है। तो वैसे ही भगवान विभू हैं। जब माया रूपी पंखा चलती है भगवान पर तो भगवान बड़े खुश रहते हैं कि हमारा सेवा अच्छा तुम कर रही हो, लेकिन हम पर यदि माया रूपी पंखा चलता है तो हम तो डूबने लगते हैं उसी में। कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसारे दुख। धोबिया पाठ देती है माया। धोबिया पाठ समझते हैं ना? देखे हैं धोबिया पाठ? नहीं। अरे जब कपड़ा गंदा होता है तो आप तो सर्फ लाकर ऐसे करते हो ना, बड़ा प्रेम से कपड़ा फटने न पाए, धोबिया ढाई ढाई मारता है गंदगी निकल जाए। तो माया ढाई ढाई मारती हम लोगों को विभिन्न प्रकार का देह दे करके। एनीवे तो इस प्रकार से माधवाचार्य ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और आज के दिन एडी 1317 में माधवाचार्य इस धराधाम को छोड़कर के चले गए। तो इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को माधवाचार्य के जीवन के विषय में थोड़ा बताया, कुछ कथानक और भागवतम का। अब यदि किसी को कोई कमेंट हो, माधवाचार्य वाले इधर बहुत लोग हैं, बताया ना 1237 में ना, एडी 1238 में। और कोई प्रश्न किसी को भागवतम से या माधवाचार्य के सिद्धांत से कथानक से मत पूछना। यस।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवतम ऐसा है, बार बार सुनते हैं कि मन मुझ भी अलग हो, जैसा भगवान बोलते हैं मन मन आ भो मत भक्तो मज्जा भी मैं नमस्कार। मन हम कैसे लगाए? नमस्कार तो करते लगे हम, हमारा मुस्बह उठता है जब मुंह काम करता है, जब बोलने का कान सुनता है, आंख भोले तस्वीर देखता है, लेकिन मन कहीं और था। दिन भर का परिचर्या कैसा, क्या बिजनेस करना है या कैसा नौकरी धंधा करना है, सबके बारे में मन दौड़ते रहता है। हम उसके लिए लाख प्रयास करते हैं लेकिन मन आता ही नहीं भगवान मानो।
ओके। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा थे, वो नहा रहे थे तो एक बिच्छू डूब रही थी, तो वे उसको बाहर निकाले, उसको डंस मार दी है, फिर वो आ गई पानी में, फिर निकाले, फिर डंस मार दी, फिर निकाले। तो एक आदमी देख रहा था, कहा कि महात्मा आप क्या कर रहे हो, ये तो बिच्छी आपको बार बार डंस मारती फिर आपको निकालते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ू? बिच्छू का धर्म डंस मारना, वो डंस मारना नहीं छोड़ रही है, मेरा धर्म है उसका कल्याण करना, मैं एक क्यों छोड़ू? तो मन का धर्म है भागना और आपका धर्म उसको लेकर के आना। जब मन अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो? अब जब करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार से मन आज थक जाएगा, यही तो बताया गया है आज के श्लोक में ही बताया गया है। फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो आग नहीं रह जाएगी ना। बहुत सुंदर बताया है, अनिंधनम बहनिवत। ईंधन मतलब फ्यूल, ईंधन अनिंधन, जब फ्यूल खत्म हो जाए, किसमें? अग्नि, बहनी अग्नि में जब कुछ डालते हैं, लकड़ी डालते हैं तब में जलता है, जब लकड़ी डालना बंद कर दो तो अपने आप बुझ जाएगा। तो वैसे ही मन भागेगा, जाएगा जाएगा, लेकिन उसको निरंतर कृष्ण नाम से पकड़ कर लाएंगे तो भी थक जाएगा। मन मटेरियल है ना, मटेरियल चीज थक जाता है, जब शरीर थक जाता है ना मन भी थक जाएगा, थोड़ा देर लगेगा। यस, सुंदर चैतन्य प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे बताते हैं कि योगी सिर्फ पूरक रेचक कुंभक करके मन को नियंत्रित करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको सबसे बड़ा मंत्र दिया है, महामंत्र दिया है, और भक्तिमय कार्य में लग के भी, और वो इतना सारा कृपा होने के बाद भी मन इतना त्रस्त करता है, तो योगी सिर्फ श्वास के ऊपर नियंत्रण करके कैसे वो मन को नियंत्रित करते हैं?
कलयुग खतरनाक समय है ना, कलो दोषे निधे रायन, यहाँ पर सब जगह दोष है, एवरीथिंग पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड, एवरीथिंग पोल्यूटेड, तो ये सांस लेने से पोल्यूशन खत्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा, ये कलयुग में वो संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण, भैया वो सब छोड़ो, सांस लेना, वो नाक पकड़ना और छोड़ना और छोड़ो, अस्ति एक महान गुण, एक ही महान गुण है, वो क्या है? कृष्णादेव कृष्ण श्या मुक्त संघर्ष, यस चांद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। दवाइयां बहुत होती है लेकिन डॉक्टर जानता है किस रोग का दवा क्या होगा, यदि गर्भित रोग है तो दवा थोड़ा डोज ज्यादा देना पड़ेगा, तो कलयुग में बड़ा खराब रोग है, ये बड़ा खतरनाक रोग है, तो इसलिए महाप्रभु इन्ने छे औषधि माया नासी वार लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम ही मांगे, महाप्रभु लाए हरि नाम, बड़ा भयावह रोग का भयावह दवा है, ये ऑर्डिनरी दवा नहीं है, ये दवा पहले उतना काम का नहीं था जितना अभी कलयुग में काम का है। और कोई प्रश्न? ओ कुरमा अवतार प्रभु, थैंक यू, यू केम बैक, एनी क्वेश्चन एनी अदर? यस,
वो यहाँ पे बताते हैं कि अनिंधन दैट अगर हम उनको लकड़ी प्रदान नहीं करेंगे तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगा,
अनिंधनम।
हाँ, तो हमारा तो ऐसा है कि इतना सारा लकड़ी ऑलरेडी भरा है अंदर, अभी बाहर से डाला नहीं तो भी वो अग्नि चलते रहेगा, तो
संसार का स्वरूप है कि परिवर्तनशील है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। यदि 10 क्विंटल चावल रख लो घर में, सोचो कितना में तो काम चलेगा, लेकिन डेली खर्चा भी हो रहा है ना, तो एक दिन आएगा कि बंद हो जाएगा, समय लगेगा, अब डिपेंड करता है किसके पास कितनी ईंधन है, कितना फ्यूल है, लेकिन खर्च हो रहा है डेली, तो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही, अब ये डिपेंड करता है कितना आप चला रहे हो इसको, कितना जला रहे हो, तो हम इसीलिए कदम जल्दी जला जल्दी जलाओ, कीर्तनीय सदा हरि नित्य निरंतर गाते रहो, फटाफट जलते जाए, फिर नहीं रह जाएगा। और कोई प्रश्न? माताजी लोगों को प्रश्न नहीं है? ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जाय, श्रीपाद माधवाचार्य की जाय।